मेरे प्रिय युवा विद्यार्थियों नमस्कार। आज 7 दिसंबर 2018 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान मित्रों का जिन्होंने एकेडमी की 3 से 17 मार्च की क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं लखन लाल प्रधान, आपका गांव है पलोरा, जिला कोंडा गांव छत्तीसगढ़ से, और सज्जन कुमार, आपका गांव है दादर, जिला औरंगाबाद बिहार से। तो लखन और सज्जन, आप दोनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज शुक्रवार है और शुक्रवार को मैं कुछ सूचनाएं देता हूं, और सूचना ये है कि कल और परसों डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएंगे। हाँ, कल प्रेस क्लिपिंग्स आपको हमेशा की तरह ही मिलती रहेंगी और संडे को प्रेस क्लिपिंग्स भी नहीं आती हैं, आप जानते हैं। साथ ही चूंकि अब इन दो दिनों में आपको राहत होगी, छुट्टियां होंगी, ऑफिस में है तो वहां की भी छुट्टी होगी, कॉलेज स्कूल में भी कम से कम एक दिन तो छुट्टी होगी ही, तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल आपको प्रोवाइड करते हैं जिसमें योजना के दो आर्टिकल होते हैं, एक हिंदी इंग्लिश का और ठीक इसी तरह से कुरुक्षेत्र के दो आर्टिकल्स होते हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश का। साथ ही मेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न पर एक वीकली क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाता है ताकि आपकी प्रैक्टिस लगातार होती रहे, और हमारे जो क्लास स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाता है। इस स्पेशल ऑडियो गाइडेंस में एक टॉपिक के बारे में उनकी समझ विकसित करने की कोशिश की जाती है और टॉपिक जनरली ऐसा रखा जाता है जिनके एग्जामिनेशन में आने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हो। दोस्तों इसके साथ ही आज थोड़ी सी दो अलग सूचनाएं भी हैं, और वो सूचना ये है कि मैं NDTV के लिए और जी न्यूज इन दोनों के लिए मित्रों ब्लॉग लिखता हूं, आर्टिकल कह लीजिए उसको, अब टीवी की इंटरनेट की भाषा में ब्लॉग कहा जाता है, वैसे आर्टिकल कह सकते हैं, काफी समय से मैं लिख रहा हूं। तो इस बार NDTV के लिए जो मैंने ब्लॉग लिखा है उसका शीर्षक है चीन की दीवार के दरकने की शुरुआत, NDTV चीन की दीवार के दरकने की शुरुआत। अगर आप लोग चाहें तो NDTV के ब्लॉग पर जाकर के मेरा यह आर्टिकल पढ़ सकते हैं। ये मैं सलाह इसलिए दे रहा हूं कि इसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से चीन से अब लोगों का मोह भंग होता जा रहा है, लोगों का मतलब दूसरे देशों का मोह भंग होता जा रहा है, और ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि अगर चीन के प्रति लोगों का मोह भंग हो रहा है तो इसका लाभ निश्चित रूप से भारत को ही मिलना है। तो एग्जामिनेशन के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं। और दूसरा एक और ब्लॉग है जो मैंने जी न्यूज के लिए लिखा है, इसका शीर्षक है चार्टर सिटी नहीं कस्बा सिटी। अभी जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है उन्होंने चार्टर सिटी की बात कही है कि चार्टर सिटी इस्टैब्लिश किए जाने चाहिए, अर्थशास्त्र का उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है, बेसिकली वो अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम है पॉल होमर, उन्होंने चार्टर सिटी की बात कही। मैंने उसका थोड़ा सा परिचय देने के बाद फिर बताया कि भारत को मूलतः चार्टर सिटी की जगह कस्बा सिटी की जरूरत है। तो एक विचार प्रधान लेख है, ये लेख छोटे छोटे होते हैं, ब्लॉग कह लीजिए, और ये भी टॉपिक मुझे एग्जामिनेशन की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मालूम पड़ता है। तो यदि आप इस विषय पर रुचि रखते हैं तो आप जी न्यूज के ब्लॉग जी न्यूज पर जाकर ये ब्लॉग पढ़ सकते हैं। मित्रों आज के अब मैं आता हूं मुख्य विषय पर, और मुख्य विषय के बारे में हम मुख्य विषय में हम चर्चा करेंगे म्युनिसिपल बॉन्ड के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है फ्रेंड्स, जिसे न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा जगह नहीं मिल पाई है, और वह है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को आप हिंदी में कहेंगे गवाह संरक्षण योजना, यानी कि जब कोर्ट में कोई केस चलता है तो आप देखते हैं कि दोनों पक्षों की तरफ से गवाह लाए जाते हैं जिन्हें हम विटनेस कहते हैं। गवाह जब आते हैं तो आप अक्सर अखबारों में सुनते रहते हैं कि क्या क्या स्थितियां होती हैं। कभी तो गवाही के लिए जिसका नाम है वो आता ही नहीं, हो सकता है कि उसको धमकी दे दी गई हो कि अगर तुमने गवाही दी तो तुम्हारे परिवार वालों को मार डालेंगे, तुमको मार डालेंगे, या हो सकता है कि वो गवाही के लिए आता है, गवाही देता भी है और इसके बाद वो मार डाला जाता है, पता लगा कि दूसरी बार वो गवाही के लिए आया नहीं है, उसकी हत्या हो गई। जो आशाराम, बापू आशाराम के देखिए कि केस में कितने गवाहों की हत्या की गई है, हो गई है, जो भी कह लीजिए, या मृत्यु हो गई। इसके बाद आप व्यापम मामले में देखते हैं, मध्य प्रदेश का जो व्यापम मामला है उसमें बहुत से गवाहों की मृत्यु हो गई है, हत्या हो गई है, हत्या कर दी गई है, मामला चाहे जो भी हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। या आप यूं कह लीजिए कि वो गवाही देने में अड़ा हुआ है, उसको धमकियां दी जा रही हैं लेकिन वो मान नहीं रहा है, तो इससे पहले कि वो गवाही देने आए उसका पता ही नहीं चला और वो लापता कर दिया गया और बाद में उसकी लाश मिल गई। तो ये स्थिति जो है वो गवाह देने वालों के मन में एक जबरदस्त किस्म का खौफ पैदा कर रही है, और बट नेचुरल है कि इसका प्रभाव इस बात पर भी पड़ता है कि फिर न्याय होने में देरी होती चली जाती है। इसका लाभ जनरली मिलता किनको है? जो पैसे वाले हैं, जो शक्तिशाली हैं, चाहे वो धन से शक्तिशाली हो या चाहे शक्ति से ही, फिजिकल पावर जिनके पास हो, गुंडों का जिनके पास समूह हो, वही धमकियां देंगे, या फिर जो राजनेता हो वो दबाव डाल सकते हैं, वो दबाव पुलिस पर भी डाल सकते हैं, अधिकारियों पर भी डाल सकते हैं, जनता पर भी डाल सकते हैं। तो अंततः इससे जो न्याय की प्रक्रिया है वह बाधित होती है और सही मायने में न्याय मिल भी नहीं पाता है, राइट? तो इसको लेकर के अभी केंद्र सरकार बकायदे एक मसौदा तैयार कर चुकी है, राज्यों की सहमति के लिए उसे भेजा जा चुका है कि किस तरह से हम अपने गवाहों को संरक्षण दे सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने बकायदे उसका जो मसौदा था उसको अपनी अनुमति दे दी है, और उसमें सामान्य तरीके से जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो बहुत सिंपल सी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक साल के अंदर हर जिले में बकायदे गवाही देने के लिए अलग परिसर बनाया जाना चाहिए। जो गवाही देने वाले लोग हैं उन्हें 24 घंटे आप सुरक्षा देने का इंतजाम कीजिए, उनके पहचान को गुप्त रखिए, अगर बताना ही है तो उनको कोई दूसरा रूप दे दीजिए, दूसरा नाम दे दीजिए, जैसे आप निर्भया कांड कहते हैं लेकिन जिनके साथ ये कांड हुआ था, दुर्भाग्यजनक कांड, उनका नाम निर्भया नहीं था, तो आप उसे कोई दूसरा नाम दे दीजिए। जरूरत महसूस हो तो आप इसे उन्हें किसी दूसरे सुरक्षित स्थान पर ले जाइए, और अगर आप ऐसा समझते हैं तो जो अपराधी है उसका कभी आमना सामना होने ही मत दीजिए, और इस तरीके से आप उसकी गवाही ले लीजिए। तो इस प्रकार से कुछ निर्देश अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं और बकायदे अब ये कानून बनेगा। आप देखिए संसद में ये बिल पेश होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर आपका ध्यान होना चाहिए। दूसरी जो खबर है फ्रेंड्स, वो है दो छोटी छोटी घटनाएं अभी आपको अखबारों में पढ़ने को मिली होंगी। एक तो ये है कि जब मिशेल को भारत प्रत्यर्पण करके लाया गया, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं अगस्ता वेस्टलैंड मामले में, तो जब ये भारत पहुंच गया तो आप देखें कि विजय माल्या ने कुछ ही देर बाद क्या स्टेटमेंट दिया कि मैं भारत के जो बैंक हैं उनकी जितनी भी राशि है 100% उनका धन देने को तैयार हूं, ये उन्होंने कहा। यानी कि जब तक मिशेल को नहीं लाया गया था, प्रत्यर्पण नहीं हो रहा था, तब तक शायद विजय माल्या को यह लग रहा हो कि नहीं नहीं मैं भी यहां सुरक्षित रहूंगा, लेकिन जब मिशेल भारत आ गया तो अब उसके मन में एक डर का भाव पैदा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भी प्रत्यर्पण हो जाए और मुझे भी इंडिया भेज दिया जाए और फिर सीधे हिरासत में ले लिया जाए। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर सरकार किसी चीज पर आ जाए, सही चीज पर, और कार्रवाई करने लगे, सबसे बड़ी बात है एक्शन, जब तक एक्शन टेकन नहीं होगा, नहीं लिया जाएगा, तब तक फिर न्याय मिलना भी मुश्किल होता है। तो अब आप देखिए कि वो कहने लगे हैं। दूसरी चीज आप देखेंगे, दो तीन दिन में आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि आम्रपाली जो बहुत बड़ा बिल्डर है दिल्ली का, है ना, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनका जो 5 स्टार्स होटल है उनको वो जब्त कर लिया जाए, ऑफिस जब्त कर लिया जाए, गाड़ियां जब्त कर ली जाए, ये सारी चीजें जब्त कर ली जाए, या जो जो चीजें उन्होंने आदेश में दिए, यानी आम्रपाली पर भी एक्शन लिया जाए। तो बट नेचुरल है कि इससे भी लोगों के मन में भय पैदा होगा, कानून के प्रति भय पैदा होगा, कानून के प्रति सम्मान पैदा होगा, कह लीजिए कानून तोड़ने के प्रति भय पैदा होगा। और भारत में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो हम क्रोनिक कैपिटलिज्म कहते हैं, वो क्रोनिक कैपिटलिज्म यही है कि समाज के जो तीन चार जो प्रमुख वर्ग है ऊपर के, आपस में उन लोगों ने इस तरह का गठबंधन कर लिया, इस तरह की साठगांठ कर ली है कि वो राज्य कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, उनके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते। इससे पहले आप दो दिन पहले आपने सुना कि किस तरीके कितने सारे 4,000 से अधिक भूतपूर्व विधायक सांसद ऐसे हैं जिन पर केस चल रहे हैं, किसी के 30-30 साल से केस नहीं सुने गए हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। ये सिर्फ इन्हीं वजहों से नहीं हो रहा है, अगर कार्रवाइयां की जाएंगी तो डेफिनेटली उसके फिर सकारात्मक प्रभाव दिखाई देने लगेंगे, दूसरों के मन में भी वह भय पैदा करेगा कार्रवाई, और वो फिक्र कानून का पालन करने के लिए बाध्य होंगे। तो ये दो उदाहरण मैंने दिए हैं जिनका उपयोग आप अपने ढंग से जरूरत पड़ने पर कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, वो है म्यूनिसिपल बॉन्ड। इसको लेकर के मैं आपको एक बहुत अच्छा आर्टिकल भी आज प्रोवाइड कर रहा हूं बिजनेस स्टैंडर्ड का। देखिए म्यूनिसिपल बॉन्ड को मैंने मुख्य विषय के तहत क्यों लिया है, इसलिए कि एक तो हमारे जो चाहे वो शहरी निकाय हो या ग्रामीण निकाय हो, यानी कि शहर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन म्यूनिसिपैलिटी वगैरह आते हैं, नगर निगम, और गांव में पंचायती व्यवस्था आती है, यानी ये हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के एक प्रकार से बेस्ट फॉर्मेट है। लेकिन ये जो सबसे ज्यादा संकट का जो सामना करते हैं वह है आर्थिक, मतलब इनके पास संसाधन नहीं है, हमेशा पैसों की कमी की बात होती है। और जो हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैं, इस पर अक्सर आप पाएंगे कि मेंस में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब सवाल है कि ये उसके लिए क्या करें, तो इस उसके लिए क्या करें, इसकी शुरुआत सबसे पहले बेंगलोर ने की थी। बेंगलोर ने म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया। बॉन्ड आप समझते हैं, बॉन्ड मतलब है कि सरकार आपसे पैसा मांग रही है कि आप 1,000 रुपए 5,000 रुपए 10,000 रुपए जितने के भी बॉन्ड खरीदना चाह रहे हो। बॉन्ड का मतलब है आप एक करार पत्र, बॉन्डिंग जिसको कहते हैं, समझौता या दोनों के बीच में, हमारे के बीच में ये बॉन्डिंग है। अब खरीद लीजिए तो सरकार कहेगी कि ये 5 साल 10 साल के बाद हम इस 5,000 रुपए के बदले में आपको इतने रुपए लौटाएंगे 10 साल के बाद 6 साल के बाद। आप सरकार को पैसा दे देते हैं और इसके बाद सरकार आपको पैसा समय अवधि जो भी होती है उसमें लौटा देती है, ये बॉन्ड होते हैं। तो बेंगलोर ने जारी किए तो बेंगलोर को पैसा भी मिला, तो 20 साल पहले शुरुआत इसकी हुई। इसके बाद फिर कुछ और शहरों ने जारी किए, जैसे पुणे ने जारी किया, पुणे के बाद फिर हैदराबाद ने भी जारी किया, हैदराबाद ने 200 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। तो इस तरीके से जो उनके पैसे की डिमांड थी, धन की जो आवश्यकता थी, वो पूरी कुछ मायनों में हो गई। तो उससे फिर उन्होंने डेवलपमेंट के काम शुरू कर दिए। और बॉन्ड की इसलिए जरूरत है क्योंकि ये अपने रिसोर्सेज से पैसे इकट्ठे नहीं कर पा रहे हैं, राज्य सरकार से इनको पैसे नहीं मिल पाते, धन नहीं मिल पाता, क्योंकि राज्य सरकार खुद ही अपने आप में दुनिया भर के घाटे में चल रही होती है। फिर केंद्र भी एक सीमा तक ही इनको सपोर्ट कर सकती है और कर ही रही। आप देखिए कि केंद्र की कितनी सारी योजनाएं शहरीकरण के लिए लागू है, शहरी आवास योजना, सौंदर्य योजना, ढेर सारी योजनाएं लागू है जिसमें कुछ हिस्सा केंद्र सरकार देती है, कुछ फिर राज्य सरकार लगाती है, कुछ जो लोकल बॉडीज हैं वो लगाती हैं। इसको दूर करने का जो बेस्ट तरीका हो सकता है, इस आर्टिकल में बताया, वो है म्यूनिसिपल बॉन्ड। और कई विकसित देश ऐसा कर रहे हैं और सफलतापूर्वक इसका संचालन कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि जो इस तरह के प्रयास किए गए वो बहुत ज्यादा सफल नहीं हुए। जैसे पुणे का उदाहरण आप इस आर्टिकल में पाएंगे कि उन्होंने पैसा ले लिया, ठीक है, उनके पास 200 करोड़ रुपए आ गए, 200 करोड़ रुपए आने के बाद उन्होंने बैंक में रख दिए, इसके बाद साल भर तक हो गया उसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। कभी पता लगा कि टेंडर दिया गया तो वो टेंडर डिस्प्यूट में आ गया, आपस में झगड़ा होने लगा कि उसको नहीं उसको देना चाहिए था, ये पार्षद फलानी बात कह रहा है, ये वो बात कह रहा है, तो इसके लिए तो पैसा नहीं लिया गया था। अब होता क्या है कि आपने बैंक में धन रख दिया है तो बैंक आपको थोड़ा सा ब्याज तो दे देगी, लेकिन उतना नहीं देगी जितना पैसा लौटाने का वायदा आपने लोगों से किया है। तो पता लगा कि डेवलपमेंट का काम तो हो ही नहीं पाया, बल्कि आपको अपने पल्ले से ही अब लोगों को पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि ये बॉन्ड कभी मेच्योर होंगे और तब आपको पूरा पैसा लौटाना पड़ेगा। तो ये इम्प्लीमेंटेशन की एक प्रॉब्लम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर कोई सुझाव आपसे मांगा जाता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैसे आर्थिक रूप से सक्षम बने, कोई उपाय सुझाइए, तो आप उसमें म्यूनिसिपल बॉन्ड के उपाय को बता सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मित्रों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स की संख्या आज काफी कम है, आप सब देख लीजिएगा। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं। उन्हीं में से चार दोस्तों के नाम हैं, कृष्ण कुमार, प्राची दिमरी रुद्रप्रयाग उत्तराखंड से, जय गढ़वी और लोचन खुराना। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इससे पहले कि मैं आज के डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करके आप सबका अभिवादन करते हुए आप सबसे इजाजत मांगू, आप सबको दो दिनों की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। दो दिनों के लिए शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आपके ये दो दिन बहुत अच्छे और ऊर्जावान रहें। नमस्कार।